समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आज सवेरे के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के संक में, और मेरा आज साथ दे रही हैं शगुन चोपड़ा। शगुन बहुत कुछ लेकर आई हैं अपने साथ और कह रही हैं कि आज आराम से धीरे धीरे अगले आधे घंटे में हम एक एक पन्ना खोलेंगे और आपको बताएंगे कि आज का दिन भी क्यों खास है ना शगुन।
वेल डेफिनेटली, नमस्कार टू यू नवीन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स। अ हार्टफेल्ट हेलो फ्रॉम नवीन हियर एंड शगुन चोपड़ा। वेल, यू आर ट्यून्ड टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वेल, एज नवीन सेड, वी हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग स्टफ व्हिच वी हैव लाइंड अप फॉर यू। वी विल ब्रिंग यू लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज। वील ऑल्सो प्रोवाइड यू मेट्रो सिटी अपडेट्स हियर एंड वील एक्सप्लोर टूडेज हिस्ट्री, द हिस्ट्री of this day, which is 5th of April 2025. But we'll begin with the headlines first,
shall we? इतिहास की बातें होंगी, खेल जगत में क्या कुछ हो रहा है, मौसम बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो आज दिन भर चर्चा का विषय बन सकती हैं, नजर उन पर डाल लेते हैं।
जी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के साथ बातचीत करेंगे। आज की बातचीत से दोनों देशों के बीच विशेष रूप से ऊर्जा, व्यापार, संपर्क, डिजिटीकरण और रक्षा क्षेत्रों में संबंध मजबूत होंगे। श्री मोदी श्रीलंका की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम कोलंबो पहुंचे। श्री मोदी का कोलंबो पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति दिसानायके मंत्रिमंडल के शीर्ष मंत्री उपस्थित थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौथे दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। भारतीय प्रवासी समुदाय ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला देखी जो भारत और श्रीलंका की साझा कला और संगीत विरासत को उजागर करती है। जहां श्रीलंका भारत की पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, वहीं ये दौरा रक्षा संबंधों को मजबूत करने तथा ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रहेगा। श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री की मौजूदगी में रक्षा और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
On digitization, on defense, on energy. So we make the formal announcements, you will have all the details.
प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका के साथ वार्ता करेंगे, जिसके बाद विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित कई नए पहलों की घोषणा की जाएगी। समझौतों पर हस्ताक्षर और उनके आदान प्रदान के अलावा दोनों नेता सांपुर सौर ऊर्जा परियोजना के वर्चुअल शिलान्यास समारोह में भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय शांति रक्षा बल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके स्मारक पर भी जाएंगे। अहमद मुईन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
President Draupadi Murmu has given assent to the Immigration and Foreigners Bill 2025, which seeks to regulate the immigration, entry and stay of foreigners in India. This act repeals the Passport Entry into India Act 1920, the Registration of Foreigners Act 1939, the Foreigners Act 1946 and the Immigration Carriers Liability Act 2000. The Act is intended to modernize the immigration laws and it has provisions to confer upon the central government certain powers with regard to passports, travel documents, visa and registration. It has been brought to avoid multiplicity and overlapping of laws. According to the law, anyone found using or supplying a forged passport or visa for entering into India or staying in or exiting the country will be punishable with imprisonment for up to 7 years and a fine of up to 10 lakh rupees. The legislation also mandates the reporting of information about foreigners by hotels, universities, other educational institutions, hospitals and nursing homes to enable tracking of overstaying foreigners. All international airlines and ships will also be required to submit at a port or place in India to a civil authority or immigration officer, the passenger and crew manifest, the advance information of passengers and crew on board such as aircraft, vessel or other mode of transport, The president's assent came after parliament approved the bill earlier this week.
गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर डिवीजन में दंतेवाड़ा जिले में जनजातीय परंपराओं और संस्कृति के महोत्सव बस्तर पंडुम के समापन समारोह में भाग लेंगे। श्री शाह दो दिन की छत्तीसगढ़ यात्रा पर कल शाम रायपुर पहुंचे। उधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से तमिलनाडु के दो दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री वैष्णव नए पंबन रेल पुल के उद्घाटन की तैयारियों की देखरेख के लिए रामेश्वरम जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन करने के लिए कल तमिलनाडु जाएंगे। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से उज्बेकिस्तान के ताशकंद में शुरू हो रहे 150वें अंतर संसदीय संघ की बैठक में भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व करेंगे। श्री बिरला सामाजिक विकास और न्याय के लिए संसदीय कार्यवाही विषय पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित करेंगे।
Now let's stretch our boundaries a bit. Let us give you some international updates here. US stocks were battered by a steep sell-off after China retaliated against the United States for President Donald Trump's tariffs in a tit-for-tat that escalates a global trade war. The Dow plunged by 2,231 points, or 5.5%. The broader S&P 500 was 5.97% lower. The tech-heavy Nasdaq Composite was 5.82% lower. The Nasdaq closed in a bear market for the first time since 2022, down more than 20% from its record high in December. The benchmark index, which entered correction Thursday, sank more than 10% over the past 2 days. JP Morgan analysts said that America's economy and the broader world economy both had a 60% chance of sinking into a recession this year. China yesterday announced duties of 34% on all U.S. imports in the most serious escalation in the trade war. U.S. President Trump raised U.S. tariff barriers to their highest level in more than a century this week, leading to a plunge in world financial markets.
शगुन अब वॉलेट और पर्स थोड़े से और खूबसूरत नजर आएंगे क्योंकि रिजर्व बैंक जल्द ही 10 और 500 रुपए के नए नोट जारी करेगा।
Wonderful.
ये नोट महात्मा गांधी की नई श्रृंखला के होंगे और इन पर गवर्नर संजय मल्होत्रा के हस्ताक्षर होंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इन नोटों की डिजाइन महात्मा गांधी की नई सीरीज में 10 और 500 रुपए के बैंक के नोट की तरह की होगी। रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही जारी 10 और 500 रुपए के नोटों का प्रचलन जारी रहेगा। और अब बात आज के खास दिन की।
जी, दैट वेरी स्पेशल डे। टुडे इज नेशनल मैरिटाइम डे। वेल, इंडिया सेलिब्रेट्स इट्स 62nd नेशनल मैरिटाइम डे, कमेमोरेटिंग द कंट्रीज सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन द शिपिंग इंडस्ट्री। Well, this day, listeners, it is observed on 5th April every year to highlight the importance of maritime operations, to be number one highlight. And then number two, express gratitude to those who brave the seas for months. And definitely very, very important that has been observed. Merchant Navy Week is also being celebrated from March 30 to April 5 in conjunction with National Maritime Day here.
और शगुन, वहीं समुद्री उद्योग के महत्व को दर्शाने के लिए गुजरात के अहमदाबाद के पास लोथल में पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित किया जा रहा है। ये परिसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत भी विकास भी के दृष्टिकोण के अनुरूप तैयार हो रहा है। हमारी संवाददाता अपूर्णा खुंट ने बताया है कि परियोजना का पहला चरण इस वर्ष के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। तो पेश है गुजरात से हमारी संवाददाता अपर्णा खुंट की ये रिपोर्ट।
अहमदाबाद शहर से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लोथल में दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मौजूद है। लोथल न केवल सिंधु घाटी सभ्यता का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था, बल्कि यह भारत की समुद्री शक्ति और समृद्धि का भी प्रतीक रहा है। इस ऐतिहासिक लोथल में 4,500 करोड़ रुपए की लागत से भारत की गौरवशाली सभ्यता और समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स आकार ले रहा है, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल मैरिटाइम म्यूजियम भी निर्माण होगा। इस म्यूजियम में हड़प्पा कालीन वास्तुकला और जीवन शैली को फिर से उजागर करने के लिए लोथल मिनी रिक्रिएशन के अलावा 4 अलग अलग थीम पार्क का भी निर्माण हो रहा है। हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में दुनिया का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम भी तैयार होगा और मैरिटाइम यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
देश दुनिया की खबरों के बाद अब जानते हैं कि आपके शहर का क्या हाल है। शगुन, कौन से शहर ले चल रखी हो?
यस, वी विल बिगिन विद चेन्नई हियर फर्स्ट। ओके, Tamil Nadu government has said that encroachments on water bodies, marsh, swamp, forest area contunement and railway land will not be eligible to get pattas under one time special regularization scheme. The Revenue and Disaster Management Department recently issued a government order for a one-time relaxation of the ban on the issuance of house site assignments in the city and suburbs. The scheme will be implemented until 31st December. The government has formed a district-level committee to scrutinize the proposals with the district collector as chairman. The proposals will be re-examined by a state-level committee headed by the chief secretary. Naveen, I have one more update from Chennai here. Greater Chennai Corporation has announced that new construction and demolition waste management guidelines will be implemented from April 21. These guidelines aim to streamline the disposal and processing of waste generated from minor repairs to large-scale construction and demolition activities in the city. Residents undertaking minor home repairs or discarding broken ceramic sanitary ware such as tiles, bath tubes and wash basins can now dispose of their waste free of charge at 15 designated locations across Chennai. Micro generators producing waste amounts of up to 1 ton can also opt for free debris clearance services by registering through Nama Chennai app or contacting the 1913 helpline. 1913. Over to you, Naveen.
दिल्ली की खबरों की बात करें तो दिल्ली नगर निगम ने अतिक्रमण विरोधी अभियान के अंतर्गत प्रीत विहार और आईपी एक्सटेंशन वार्ड में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान बड़ी संख्या में सामान जब्त किए गए और कई अस्थायी ढांचों को हटाया गया। दो दिनों तक चले इस संयुक्त अभियान के तहत लगभग 35 छप्पर जो थे वो हटाए गए। अगली खबर, दिल्ली विधानसभा परिसर में कल भगवान महावीर गाथा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण महोत्सव और 2624वें जन कल्याण के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात की सुगमता के लिए लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कल 500 करोड़ रुपए की लागत से सोनिया विहार पुष्टी पर 6 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड के निर्माण की घोषणा की। और दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो ने यात्री अनुभव को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए डीएमआरसी सारथी मोमेंटम 2.0 ऐप पर एकीकृत यात्रा समाधान की शुरुआत की है। इस नई पहल से यात्रियों को एक ही बार मेट्रो टिकट लेकर अपनी यात्रा की पहले और आखिरी स्टेशन के लिए बाइक, टैक्सी और ऑटो रिक्शा बुक करने की सुविधा मिलेगी, जिससे मेट्रो यात्रा का अनुभव और भी सरल और सुविधाजनक हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है। एक ही टिकट लीजिए मेट्रो से बाहर निकलिए, या फिर आपके लिए ऑटो टैक्सी होगी या फिर आपके लिए रिक्शा वहां पे खड़ा होगा और बस अपने गंतव्य तक पहुंच जाइए।
वेरी कन्वीनियंट।
शगुन कह रही है बहुत ही अच्छे हो रहा है, कहां बाहर निकल के है ना रिक्शा खोजना पड़ता है, एक ही टिकट लीजिए और उसी में जहां जाना है वहां पहुंचिए, है ना।
ट्रू दैट नवीन।
चलिए रिक्शे पे अब बैंगलोर चलते हैं।
Definitely. A delegation led by Andhra Pradesh Municipal Administration Minister Dr. P. Narayana visited the Bengaluru Solid Waste Management Limited campus to view the solid waste management initiatives of Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike. Andhra Pradesh Capital Region Development Authority Commissioner K. Kannababu and Municipal Administration Commissioner and Director Dr. P. Sampath Kumar were present on this occasion. The Bruhat Bengaluru Mahanagar Palike Chief Commissioner and Managing Director of the Solid Waste Management Limited, Tushar Girinath, explained the operations. He informed that for the first time, user fees will be collected from waste generators along with the property tax to manage solid waste. He added that 6,500 metric ton of waste is generated in the city every day. A whopping 6,500 metric ton waste is generated. You have Naveen here. And they are segregated into dry, wet and hazardous sanitary waste. About 150 to 200 metric ton of waste per day are scientifically then disposed of. And now let's us focus on Hyderabad. Telangana has decided to escalate its water sharing dispute with Andhra Pradesh to the Supreme Court pointing to two major interlinking projects, the Godavari Banakatrela Link Scheme and the Rayalaseema Lift Irrigation Scheme. Telangana Irrigation and Civil Supplies Minister Uttam Kumar Reddy announced the legal move at a high-level meeting held in Hyderabad yesterday. The minister alleged the Andhra Pradesh government of violating established water-sharing agreements and said the unilateral execution of these projects poses a grave threat to Telangana's irrigation and drinking water needs. He asserted that the state will not be mute spectator and these schemes are unconstitutional and detrimental to Telangana's future. The Godavari Banakatrela project, with an estimated cost of over 80,000 crore rupees, aimed at diverting 200 TMC of Godavari water from Polavaram to Rayalaseema through Bollapalli Reservoir and Banakatrela head regulator. He further said the proposal envisages linking the Godavari, Krishna and Penna rivers, which goes against the Godavari Water Disputes Tribunal Award of 1980 and the Andhra Pradesh Reorganization Act of 2014. The minister further said the Telangana government is committed to correct the mistakes of the past and the legal battle will be grounded in facts and law.
रुख करते हैं मुंबई का। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की मौजूदगी में कल मुंबई के राजभवन में राजस्थान और ओडिशा के स्थापना दिवस संयुक्त रूप से मनाए गए। कार्यक्रम का आयोजन महाराष्ट्र राजभवन ने सतारा स्थित कर्मवीर भावराव पाटिल विश्वविद्यालय के सहयोग से एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत किया था। विद्यार्थियों ने राजस्थान और ओडिशा के लोक नृत्य, संगीत और सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हुए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इनमें केसरिया और जिरमिर बरसे जैसे राजस्थानी लोकगीत और ओडिशा लोकगीत रसर केलीबो को भी शामिल किया गया। उधर मुंबई के विश्व व्यापार केंद्र और अखिल भारतीय उद्योग संघ ने प्रोचिली में भारत में व्यापार आयुक्त श्री जॉर्ज लॉयला कास्त्रो के नेतृत्व में चिली के एक उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार श्री कास्त्रो ने कहा कि चिली भारत के साथ कृषि, महत्वपूर्ण खनिजों और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को मजबूत करने का इच्छुक है। बात कोलकाता की। पश्चिम बंगाल सरकार चिकन उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए अत्याधुनिक तकनीक पेश करेगी। राज्य सरकार के पशुपालन विभाग ने बताया है कि 72 करोड़ की लागत से नीदरलैंड से तकनीक लाई गई है और नादिया जिले में एक प्रसंस्करण इकाई विकसित की जा रही है और ये इस साल जून तक काम करना शुरू कर देगी। तो ये थी आपके शहर की खबरें। शगुन राजनीतिक खबरें हो गई हैं, इसके बाद आपके शहरों की भी खबरें हो गई हैं और एक पन्ना ऐसा होता है जिसका खेल प्रेमियों को बहुत इंतजार रहता है।
ट्रूली।
तो पलटते हैं आज सवेरे का एक और पन्ना, नजर डालते हैं खेलों की दुनिया में और खेलों की तमाम खबरों के साथ इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मुकेश बल। तो मुकेश, कहां से शुरू कर रहे हैं और क्या खास है आज खेलों की दुनिया में?
नवीन खेलों की दुनिया में आज बात निशानेबाजी, हॉकी, क्रिकेट और मुक्केबाजी की। सबसे पहले निशानेबाजी की बात करते हैं। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में एशियाई खेलों के पदक विजेता चैन सिंह ने कल पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारत के लिए पहला पदक हासिल किया। उधर ब्राजील में हितेश मुक्केबाजी विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में 70 किलोग्राम भार वर्ग में फ्रांस के माकन ट्राउर को हराया। इस बीच जादूमणि सिंह, सचिन सिवाच और विशाल ने अपने अपने भार वर्ग में कांस्य पदक जीते। हॉकी की बात करें तो कल से झांसी में 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप शुरू हुई। 15 अप्रैल तक होने वाली इस चैंपियनशिप में 30 टीम हिस्सा ले रही हैं। इस टूर्नामेंट में नया प्रारूप आकर्षण का केंद्र है। वहीं आईपीएल क्रिकेट में कल रात लखनऊ के इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 203 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस सूर्य कुमार यादव के धुआंधार 67 रन के बावजूद 5 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। आज चेन्नई में दोपहर बाद 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। एक अन्य मुकाबले में चंडीगढ़ में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। खेलों की दुनिया से बस इतना ही। आज सवेरे के बाकी सफर के लिए वापस चलते हैं नवीन के पास।
मुकेश, खेलों की दुनिया से एक और अपडेट हमारे पास आ रहा है। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में विश्व कप निशानेबाजी टूर्नामेंट में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में भारत की स्विफ्ट कौर सामरा ने स्वर्ण पदक हासिल कर लिया है। तो ये थी खेलों की दुनिया की बात, और अब मौसम क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। शगुन, कौन सा मौसम किस शहर का सबसे पहले?
Naveen, first we'll again begin with Chennai. It is expected to have a partly cloudy sky. The minimum temperature was 26 degrees Celsius and maximum will be around 34 degrees. Now focusing on Bengaluru, it is expected to have partly cloudy sky with the possibility of development of thunder lightning. The development of thunder lightning, there is a possibility. The minimum temperature was 21 degrees Celsius and maximum will be around 30 degrees. Hyderabad now, it is expected to have partly cloudy sky with haze. The temperature will hover between minimum of 24 degrees and a maximum of 37 degrees Celsius, Naveen.
Shagun ne jo mausam bataya na, usme har jagah partly cloudy, kahin kahin badal baras rahe hain. Kaash ye Delhi mein bhi ho jaye, hai na?
We are waiting for that, right? Temperatures are soaring.
Delhi mein aaj adhiktam taapman thoda sa aur badh jayega, 37 degrees Celsius ke aaspaas chala jayega, nyunatam taapman 21 degrees Celsius ke aaspaas rahega. Bas yahi thodi si gadbad ho jati hai. अधिकतम कुछ हो रहा है और न्यूनतम जो है ना वो अभी 21 के आसपास अटका हुआ है, यानी थोड़ी सी ठंड थोड़ी सी गर्मी।
हाँ, that is consistent, but the temperature is rising, that we can say.
मुंबई का रुख करते हैं, अधिकतम तापमान 35 डिग्री, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री के आसपास रहेगा और अधिकतम तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। और अब बात आज के दिन के इतिहास की।
Well, we'll delve into the history of today. First, let's take our listeners way back in time. We'll start with the year 1581. Mahmud Gawan was appointed as Prime Minister, an office which he held till his execution. In the year 1614, Indian Princess Pocahontas married English colonist John Rolfe. In the year 1663 now, Chhatrapati Shivaji Maharaj attacked Shahistik Khan at Pune.
और अब बात कर लेते हैं सीधा 1930 की बात। 5 अप्रैल आज ही का दिन, इसी दिन महात्मा गांधी अपने समर्थकों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी पहुंचे थे। 1919 की बात करें तो आधुनिक भारतीय मर्चेंट शिप की शुरुआत हुई थी। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी का 5,940 टन का पोत लिबर्टी अपनी पहली यात्रा पर रवाना हुआ था।
नवीन, अलाउ मी टू टेक लिसनर्स वे बैक अगेन, 1848 नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सातारा किंगडम व्हिच वाज अ मराठा रम स्टेट came to an end in when it was annexed by the British East India Company under the doctrine of lapse policy, doctrine of lapse of Lord Dalhousie after the death of the last ruler, Raja Shahji.
बात 1949 की, भारत स्काउट्स एंड गार्ड्स की स्थापना हुई थी और 1989 में देश का पहला नौसेना संग्रह बंबई अब मुंबई में खुला।
In the year 1961 now, Indian Drugs and Pharmaceuticals Limited was established in New Delhi by Indian government for allopathic drugs.
तो ये थी वो तमाम घटनाएं जो जुड़ी हुई थी आज के दिन से, और अब नजर डालते हैं उन व्यक्तियों को जो कहीं ना कहीं आज से दिन से जुड़े हुए हैं और अपनी छाप छोड़ कर गए हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पंडिता रमाबाई मेधावी का, प्रख्यात विद्वान और समाज सुधारक थीं। भारतीय महिलाओं को उनकी पिछड़ी स्थिति से ऊपर उठाने के लिए वो समर्पित थीं। आज उनकी पुण्यतिथि है, आज ही के दिन 1922 में उनका निधन हुआ था। मेधावी क्रिएटर का नाम रमाबाई मेधावी के नाम पर रखा गया है और आज ही के दिन जैसा हमने कहा सन 1922 में वो पुण्यगति को प्राप्त हुई थी।
Well, now let's talk about Kanika Bandyopadhyay. Well, Bengali singer known for performing Rabindra Sangeet. Well, she was gifted with an inimitable voice, a result of her voice culture, her training and her experience. And she earned a special place among the lovers of Rabindra Sangeet. And this Sangeet, well, it is characterized by significant amount of ornamentation like meent, murki. So let's listen to her voice now.
आज ही गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार पन्नालाल पटेल की भी पुण्यतिथि है। उन्हें रणजीतराम पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुजराती भाषा के अग्रणी कथाकार रहे जीवी पन्नालाल पटेल के प्रसिद्ध उपन्यासों में से एक है और ये उपन्यास राजस्थान और गुजरात की सीमावर्ती एक गांव पर आधारित है।
Now let's talk about Leela Majumdar. Well, a prominent Bengali author, she is well known for her children's literature. Her writing, it blends humor with storytelling, and this makes her works timeless and stand apart, and it is read by generations of readers. Let me name one of her very interesting story. This is her first story, Lakhi Chele.
Aur ab baat Divya Bharti ki. 1990 ke dashak ke log bahut aasani se aur bahut khoobsurati se is naam ko identify kar pa rahe honge. The most versatile actress mein gini jane wali abhinetri thi Divya Bharti. Bahut hi kam umr mein apne acting career ki shuruaat ki thi aur 3 saal में टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गई थी. एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बहुत ही कम उम्र में अपनी पहचान बनाई, हिट फिल्में दी, करीब 20 फिल्मों में उन्होंने शोहरत पाई, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ था, अकस्मात ही उनकी मृत्यु भी हो गई. आज उनकी पुण्यतिथि है, लेकिन उनको आज यानी दिव्या भारती को आज हम इन 3 खूबसूरत गानों से याद कर रहे हैं.
Such a beautiful medley there. Well, she was the rising star with a unique charm and talent. And Naveen, this is the beauty of being an artist, that your work will continue to inspire the generations to come.
और इसीलिए इन्हें बॉलीवुड वाले गुड़िया के नाम से पुकारते थे. और अब बात उन व्यक्तियों की जिनकी आज जयंती है या जिनका आज जन्मदिन है. तो आज सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी की जन्म जयंती है. गुरु अमरदास पंजाब के 22 सिख प्रांतों में बांटने की अपनी योजना और धर्म प्रचारकों को बाहर भेजने के लिए प्रसिद्ध हुए.
Well, today it's also birthday of Mr. Senapati Chris Gopal Krishnan, is the chairman of Axilla Ventures, an accelerator that helps startups during the early stage of their business journey. Well, in January 2011, he was awarded Mr. Gopal Krishnan was awarded the Padma Bhushan, and he invests in promoting research on brain sciences, aging related disorders, as well as investing in startups and startup ecosystem here.
आज ही आधुनिक भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष जिन्हें सम्मानपूर्वक बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता था, बाबू जगजीवन राम की भी जयंती है. आज ही के दिन 1908 में उनका जन्म हुआ था. और आज ही जन्मदिन है भारतीय तीरंदाज अतनु दास का.
Well, now let's spread some happiness. Today it's also birthday of the musician Pharrell Williams, and this very beautiful song I have chosen, we have hand-picked for our listeners, musician, singer, songwriter Pharrell Williams here.
It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.
आज ही तेलुगु और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अदाकारा रश्मिका मंदाना का भी जन्मदिन है. बहुत ही कम उम्र में सिने प्रेमियों के दिल पर छाने वाली रश्मिका मंदाना का 1996 में आज ही के दिन जन्म हुआ था. करियर की शुरुआत 2016 में कन्नड़ फिल्म किरी पार्टी से की थी, लेकिन इस गीत से वो हिंदी सिने प्रेमियों के दिलों पर छा गई.
पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चढ़ूं सामे तेरे पगल बैठूं ऐसे जैसे.
और अब चर्चे चलते हैं. मैं नवीन और शगु ने खूबसूरत विचार के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं कि हर चुनौती में एक नया अवसर छिपा होता है, इसे पहचानो और आगे बढ़ो.
वंडरफुल थॉट देयर. थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन. वी होप यू हैव अ सुपर्ब डे.
नमस्कार।